आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
नमस्कार, मेरा नाम बिंदिया है। मैं मुंबई से हूँ और मैं शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च का काम कर रही हूँ। आज हम अध्याय 9 की तरफ रुख करेंगे और ये इस अध्याय को समझें उससे पहले आज जो विषय हमारे सामने आ रहा है वो अभी तक दूसरे पक्षों की व्याख्या करता था, परंतु आज हम इस अध्याय के माध्यम से उसकी व्याख्या करेंगे। तो मैं बात कर रही हूँ संविधान की। अभी तक हमने जाना संविधान कैसे बना, उसने किसको शक्ति दी, कितने अंग हैं, उसकी शक्तियों का उपयोग कैसे होता है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कैसे रोकता है, संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। पर ये जो संविधान है आज इसका क्रियान्वयन कैसे होता है, इसका शासन, इसकी व्याख्या कैसे होती है, क्या ये संविधान जो बन गया वो बन गया, इसमें कोई बदलाव नहीं होता, तो इस बारे में आज हम जानेंगे कि ये संविधान क्या इसमें कुछ बदलाव होते हैं, क्या इसमें कोई संशोधन होते हैं, क्या अब इसका कभी जो मूल स्वरूप है, जो हम खासकर अपने भारत के संविधान की बात करें तो क्या हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। तो आज हम अध्याय 9 संविधान एक जीवंत दस्तावेज, ये इसका शीर्षक है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और ये जिसका शीर्षक है एक जीवंत दस्तावेज, इसी में ही संविधान का पूरा सार छुपा हुआ है। ये संविधान जीवंत दस्तावेज है, जैसे मानव जीवन, जो हमारा जीवन है वो भी जीवंत है, चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। बचपन है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा, फिर ऐसे एक साइकिल है और ये प्रगति करती रहती है। वैसे ही संविधान भी हमारी तरह एक जीवन जीता है, एक देश का वो जीवन जीता है। संविधान का जीवन जो है वो कि जो संस्थाएं हैं उनके ही तरह से वो अपने आप को जीता रहता है, जो उसके लोग हैं, जिसके देशवासी हैं, जो उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को संविधान देखता है और अपने आप को उसकी तरह मोल्ड भी कर लेता है, अपने आप को बदल देता है। आज हम संविधान एक जीवन दस्तावेज पर चर्चा करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें और इस चैप्टर पर आ जाएं। यहाँ पर इसका परिचय दिया है पेज नंबर 196 पर। इसको छोड़कर हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होती है? उसका मतलब है क्या हम संविधान को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? तो देखिए, जो भी एक समाज है, मानव से ही समाज बनता है और समाज हम कहते हैं सामाजिक जीवन परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है, कुछ न कुछ चेंजेस आते रहते हैं। और आप अपने दादा परदादा के समय से अपने समय को देखिए, समाज कितना बदल गया है। और वैसे ही जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे उस देश की, उस समाज की राजनीति में भी बदलाव आता है, और जब राजनीति में बदलाव आता है तो संविधान में भी बदलाव आता है। ऐसा नहीं है कि एक जो संविधान लिखा गया वो नहीं बदला गया। कई राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर समय समय पर नए नए संविधानों का प्रावधान किया गया, एक संविधान हटा दूसरा संविधान आया। उदाहरण देखिए सोवियत संघ का। तो ये जो सोवियत संघ है, अब हम इसको रशिया कहते हैं क्योंकि इसका विघटन हो चुका है ना, इससे अलग अलग राष्ट्र बन गए। तो 1918 से लेकर 1977 के बीच यहाँ पर 4 बार संविधान पूर्ण रूप से बदला गया। और जब इसका यहाँ पर 1991 में जब इसका विघटन शुरू हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ से हट गई, जब रूस का रूप आ गया, सोवियत संघ हट के रूस बन गया, तब यहाँ से 1993 में फिर एक नया संविधान आया, मतलब 5वां संविधान आया। और ये रशिया सिर्फ अकेला देश नहीं है, आप फ्रांस का भी उदाहरण देखिए। फ्रांस की जो क्रांति है जिसने पूरे मानव जीवन को बदल दिया, हमारे संविधान ने भी उससे प्रेरणा ली। तो वो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद एक नया संविधान आया। ऐसे करते करते समय के संग पूरे फ्रांस ने उसकी 200 साल का आप इतिहास देखें तो उसमें 5 संविधान बदले गए। अभी जो संविधान वहां पर फिलहाल है वो उसका 5वां संविधान है। तो इस तरीके से संविधान में परिवर्तन किए गए, परिवर्तन के भी नहीं, इनको पूरा बदल दिया गया उस समय की परिस्थितियों के साथ। तो जब इनको बदला गया तो अब हम अगर अपने देश भारत की बात करें तो हमने ये संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, मतलब ये 70 साल का समय। तब से ये संविधान लगातार काम कर रहा है और कितनी भी सरकारें आई, किसी भी दल की आई, उन्होंने संविधान के अनुसार ही काम किया है और कर रहे हैं। मतलब जब से हमारा संविधान आया हमने कोई संविधान नहीं बदला, बाकी देशों ने बदला। तो इसका मतलब है कि हमारा संविधान इतना बढ़िया है कि उसमें कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं लगी। और जो हमारे संविधान निर्माता थे वो भी बहुत दूरदर्शी थे, वो जानते थे आने वाले पल में क्या होना है, तो उन्होंने उसका अंदाजा पहले ही लगा लिया था। तो देखिए इस अर्थ में देखा जाए तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। हमें एक बहुत मजबूत संविधान मिला है विरासत में और इस संविधान को इस तरीके से बनाया गया है कि अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। और ये बात भी सही है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो बहुत दूरदर्शी थे और समझ गए थे कि आने वाले फ्यूचर में इस तरीके के सवाल उठ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन देखिये जैसे जीवन स्थिर नहीं रहता वैसे इस जीवन तो बहुत आगे है। हम कोई भी ये पूरे यूनिवर्स, आप जो साइंस पढ़ते हैं तो कहते हैं ना चेंजेस आ रहे हैं, तो फिर संविधान आपको लगता है हमेशा एक जैसा रहेगा? वो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता जिसे बदलने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कुछ न कुछ बदलाव होते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न पर आएंगे। तो अगर बदलाव की जरूरत है तो ये हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है, इतने सालों से बिना बदलाव के काम कर रहा है? तो एक तो ये इसका उत्तर है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया कि समय की जरूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। बिल्कुल, जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने ऐसी स्थितियां ही लिख दी कि उन्होंने देखिए कितना उनकी समझ पर आपको गर्व करना चाहिए कि उन्हें पता था कि समय बदलेगा तो संशोधन होंगे ही, तो उन्होंने पहले से ही इस तरीके के प्रावधान बना दिए कि संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है किसी संवैधानिक बात की एक से ज्यादा व्याख्याएं हो सके। देखिए व्याख्याएं का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि जो हमने लिखा है वो तो उस समय की परिस्थिति है, लेकिन आने वाले भविष्य में कई लोग इसके बारे में डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये जो हमारा संविधान है बहुत लचीला है। लचीले का अर्थ है कि इसमें कई चीजों का मिश्रण है, कई लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, संविधान को समझा सकते हैं। तो एक तो जो व्याख्या होती है जो संविधान को बदल सकता है वो एक चीज है, वो है अदालती फैसले। देखिए 1950 में कोई मामला हुआ उस समय क्या परिस्थिति थी और आज जब वो वाकया होता है तो अदालती फैसले अलग आते हैं। आपने देखा ना अदालत अपने आप को खुद को भी पुनरावलोकन करती है, तो जो अदालत के फैसले होते हैं उससे संविधान में चेंजेस आ सकते हैं, अदालत के फैसले से। दूसरा राजनीतिक व्यवहार से भी आ सकते हैं, मतलब जो हमारी संसद है वही हमारा कहते हैं ना कि लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं संसद को, तो संसद को भी कुछ शक्तियां दी गई है, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं उन्हें संविधान ने शक्ति दी है कि वो कुछ संशोधन कर सकते हैं। इन्हीं वजह से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब ना बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है।
ऐसा नहीं कि लिख के बंद करके ताला लगा दिया बस इसमें जो लिखा वही होगा, ऐसा नहीं है। ये जीवंत इसीलिए है क्योंकि इसमें बदलाव होती रहे, तभी ये जीवंत है, नहीं तो ये जड़ हो जाता, निष्क्रिय हो जाता। तो समय के एक खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उसके समाधान की प्रयासों की झलक संविधान में दिखाई दे। तो देखिए, जब समाज है वो तो एक इस वक्त का आप समय ले, 2019-2020 की बात करते हैं हम, अभी हम सब एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं, कोरोना से। तो क्या 1950 में तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की कोई स्थिति आ सकती है? उस समय तो जीवन आराम से चल रहा था। पर ये जो एक ही खास समय है, इस खास वक्त को हम लोग जी रहे हैं और इस खास वक्त को हम ही बदलेंगे। हमारी सरकारों को उन स्थितियों से सामना करना पड़ रहा है। तो जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि समस्याएं नई नई आती रहेंगी और इनके समाधान ढूंढने के लिए उस समय जो लोग होंगे उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी सोचा कि आने वाले समय में वो सरकारों के कामकाज के लिए एक रूपरेखा भी देंगे। इसीलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करने में भी सक्षम होना चाहिए। देखिए, उस समय के साथ साथ उन्हें भविष्य की भी तैयारी करनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है। हम अगर अभी आप 11वीं कक्षा में हैं, आप सिर्फ 11वीं का ही, अगर बस मुझे 11वीं पास करनी है, ठीक है, वो आपको पास करनी है, पर आप आगे भविष्य का भी तो सोचते हैं, कुछ तो थोड़ी सी हम प्लानिंग करते हैं। वैसे ही एक जब देश चलता है तो संविधान निर्माताओं ने माना कि फिलहाल देश में ये कंडीशन है, लेकिन आगे किस तरीके से बदलाव होंगे उसको समझने के लिए उन्होंने संविधान को लचीला बनाया। और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं होता है। संविधान को बनाया तो हमने मनुष्य नहीं है, तो जैसे मनुष्य में बदलाव आता है उसमें संविधान में भी संशोधन होगा, उस पर पुनर्विचार होगा। और जो संविधान है उस समय का जो समाज होता है उसकी इच्छाओं को बताता है, उसकी आकांक्षाओं को बताता है, तो इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। और इस दृष्टि से संविधान एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। जैसा समाज वैसा ही संविधान बनेगा। तो संविधान की दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। देखिए, अब सवाल भी आ गए। हम एक तरफ कहते हैं कि संविधान बड़ा पवित्र दस्तावेज है, तो फिर आप क्यों इसमें बदलाव कर रहे हैं, एक सवाल आ सकता है ना। और दूसरी तरफ ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये इतना आम मसला है तो इसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे हम बदलाव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो हमारे संविधान निर्माता हैं, उनका मानना था कि संविधान में एक संतुलन होना चाहिए। संतुलन का मतलब कि कुछ सामान्य कानून भी होने चाहिए और कुछ विशिष्ट कानून भी होते हैं। तो उन्होंने जो हमारा संविधान है उसको एक ऊंचा दर्जा दिया। नॉर्मल कानून नहीं है, संविधान नॉर्मल कानून से ऊपर है। और उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि भविष्य में इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। और वो इस बात को भी लेकर सचेत थे कि जब परिवर्तन आएगा तो लोगों की अपनी अपनी राय होगी, सब अपनी राय के हिसाब से चलना चाहेंगे, सबको लगेगा, जब तब सहमत होंगे तो उन्हें भी लगेगा कि संविधान में संशोधन करना है। तो वे जानते थे कि जब समाज किसी मत विशेष की ओर ज्यादा आकृष्ट होगा तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाए। इसीलिए उन्होंने दो बातों का ध्यान रखा कि पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इसको लचीला भी बनाया गया। लचीला मतलब समय के संग इसमें परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। ये हुआ लचीलापन। इसका मतलब है कि ये कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया। उनका कहना है कि हमारा जो संविधान है वो लचीला होना चाहिए, पर लचीला है साथ में थोड़ा सा कठोर भी है। इसका अर्थ ये है कि लचीला है जब समाज में कोई जरूरत पड़े तो उसको बदला भी जाए, पर इतना कठोर भी है कि ऐसा नहीं कि जो सरकार आए अपने मनमाने ढंग से इसको संविधान को बदल दे। हम लोकतंत्र हैं, है ना, तो लोकतंत्र रहेगा। अब कोई आकर इसको राजशाही नहीं बना सकता कि आए और हिटलर शाही आ गई या कोई एक राजा इस पे राज करने लगा। नहीं, देश की सरकार जो है वो लोकतंत्र से ही चलेगी, तो ये इस मामले में कठोर है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन लोकतंत्र के मामले में जो छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे मतदाता की उम्र घटाई बढ़ाई जा सकती है, आरक्षण किया जा सकता है, इस तरीके के प्रावधान जो संशोधन है उसके रूप में इसको लचीला बनाया गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता। आप पेज नंबर 199 पर है, थोड़ा सा नीचे आ जाए, वहां लिखा है संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, इसकी एक प्रक्रिया है। तो हमारे जो संविधान है उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 368 अनुच्छेद 368, जो कहता है संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल या हटा सकती है। एकदम क्लियर कह दिया कि किसको मिला है ये ताकत संविधान में संशोधन करने की, संसद। तो संसद नए चेंजेस भी ला सकती है और जो पुराने चेंजेस है उनको बदल के या उनको हटा भी सकती है। आर्टिकल 368 हमारी संसद को पावर देता है संविधान में संशोधन करने के लिए। आपको ये आर्टिकल नंबर रट जाना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, आर्टिकल 368। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने आज से इतने साल पहले ही लिख दिया था कि हम जो हमारा संविधान है वो संसद को शक्ति देता है कि तुम मुझ में बदलाव कर सकते हो। तो हम पहले ही इसमें लिखा है, कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता को एक संतुलित दस्तावेज बनाना था। वो चाहते थे कि संतुलित रहे, लचीला भी रहे कि टाइम के संग उसको बदला जा सके, और इतना भी लचीला ना हो कि कोई भी अपने मन से उस पर चेंजेस ला दे। तो दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में थी। यहाँ लचीला का मतलब है परिवर्तन के प्रति खुली दृष्टि, और कठोर का अर्थ है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया। लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, और कुछ कठोर नियम भी होते हैं जो संविधानों को में संशोधन करना थोड़ा सा मुश्किल कर देते हैं, वो होते हैं कठोर। तो जो हमारा संविधान है इन दोनों का मिक्सचर है। हमारा संविधान लचीला भी है कठोर भी है। लचीला कहते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा बहुमत नहीं चाहिए, संसद नॉर्मली उसको संशोधन कर सकती है। पर कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनको चेंज करने के लिए संविधान कहता है कि संसद को विशेष बहुमत चाहिए, मतलब वो जो विशेष बहुमत है उसकी बहुत बड़ी ताकत है। हमने कई बार पढ़ा कि विशेष बहुमत क्या है, मैंने आपको समझाया था, और अभी हम आगे फिर समझेंगे विशेष बहुमत क्या है। क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे जानते थे संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं, वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोषमुक्त नहीं है और समय के संग उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। इसका निवारण करने के लिए उन्होंने कुछ प्रावधानों को स्वरूप अस्थाई था और उनके बारे में राय अपनाई गई कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज व्यवस्था बनाने के पक्ष में था, इसीलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए कि राज की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना ना हटाया जा सके, और कुछ पक्ष
इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखे। तो देखिए, इन्होंने इनको पता था कि समय के संग स्थिति बदलेगी, पर हम संघ भी हैं, हम केंद्र हैं, साथ में राज्य भी हैं, तो इस तरीके के नियम बनाए गए कि कुछ मुद्दों पर तो केंद्र खुद बदलाव कर सकता है संशोधन में, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं कि राज्यों की भी हामी आपको लेनी पड़ेगी। जब तक राज्य हाँ नहीं कहेंगे, आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, और यही संघीय व्यवस्था को अत्यंत मजबूत बनाता है। तो हमारे देश में कुछ प्रावधान है, उन्हें संविधान में दिया गया है, जो बताते हैं कि संविधान का संशोधन कैसे होता है। तो देखिए, जो संविधान में संशोधन है उसके तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके। पहला तरीका है संसद में सामान्य बहुमत के आधार। कुछ ऐसे मामले हैं जैसे राज्यों की अगर बाउंड्री वगैरह चेंज करनी है, उनके क्षेत्र अधिकार बदलने हैं, तो संसद में सामान्य बहुमत चाहिए। मतलब दोनों सदन का सामान्य बहुमत, मतलब 50% बहुमत। अगर 500 सीट, मतलब 500 सांसद है, तो उसमें से अगर 250 उसके पक्ष में वोट कर देते हैं तो वो संशोधन हो गया, संविधान में संशोधन हो गया, है ना। संविधान के अंदर कोई बदलाव करना है तो पहला क्या है, संसद में सामान्य बहुमत। दूसरा प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत। ये आर्टिकल 368 है, वो कहता है कि सब जो हमारे सदन है, राज्यसभा लोकसभा, दोनों अलग से अपने अपने साइड से विशेष बहुमत से उस विधेयक को पारित करेंगे। मतलब राज्यसभा का अपना विशेष बहुमत होगा, लोकसभा का अपना होगा। मैंने आपको विशेष बहुमत बताया था क्या होता है, फिर से दोहरा देती हूँ कि विशेष बहुमत में, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए लोकसभा का, तो लोकसभा में 545 करीब सदस्य होते हैं, तो अगर किसी सीट को पास कराना है तो पहले तो उसका जितने 545 में से 273 इतने लोग उसको पहले मत, जो सांसद है उसको पास करेंगे। ये उनके नॉर्मल बहुमत हो गया, सिंपल बहुमत, है ना, 545 का आधा करीब यही पहुंचेगा। ये इसके पास होने के बाद जो लोग मतदान कर रहे हैं उस समय, जो लोग प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट लोगों में से 75% लोगों को यस बोलना पड़ेगा, तब जाके वो विधेयक पास होगा। ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। पहले तो उतने जितने संसद की सीट से, भले ही वो लोग आए ना आए, अगर 545 है तो 545 में से 273 पहले उसके पक्ष में, मतलब मिनिमम वोट पड़ने चाहिए। और अगर जितने लोग आए हैं उस दिन वोट करने, सारे 545 तो आएंगे नहीं, जितने मतदान करने आए हैं उनका 75%, उनकी स्ट्रेंथ का 75% जब उसको पारित करेगा तब जाकर वो विधेयक पास होगा। तो पहले ये प्रोसेस लोकसभा में होगी और फिर राज्यसभा में होगी, तब जाके एक नया संशोधन होता है, इसको हम विशेष बहुमत कहते हैं। ये हो गया सेकंड प्रक्रिया। और तीसरी प्रक्रिया और जटिल है कि पहले तो विशेष बहुमत मिलेगा, दोनों सदन पास करेंगे विशेष बहुमत से, उसके बाद कुल राज्यों की आधी विधायिका है उसको पास करेंगी। मतलब अगर हमारे देश में 29 राज्य हैं तो कम से कम 29 का आधा एक अनुमान से ले लें तो 16 विधानसभाएं उसको पास करेंगी उस विधेयक को, तब जाकर वो नया कानून बनेगा, नया संशोधन होगा। तो अब आप सोचिए कितनी जटिल प्रक्रिया, मतलब इजी से हम टफ की तरफ जा रहे हैं। आपका जैसे क्वेश्चन पेपर आता है ना, पहले आपको वन मार्क क्वेश्चन होते हैं, जल्दी से आप लोग टिक लगा देते हो, उसके बाद दो नंबर आते हैं, फिर थोड़े से कुछ क्वेश्चन हार्ड होते जाते हैं, है ना, बताइए। तो वैसे ही संसद में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो तीन तरीके की है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तीन तरह की है। पहला है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर, दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका से पास। तो ये तीन तरीके के हमारे आज संशोधन की प्रक्रिया है। तो तो संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई आपको विशेष प्रक्रिया नहीं अपनानी होती। तो यहाँ पर जो संशोधन है और सामान्य कानून है उसमें कोई अंतर नहीं रहता। इसका मतलब है कि जो संविधान कहता है कि ये बहुत लचीला है ना। अब आपको देखिए यहाँ पर दो अनुच्छेद दिए गए हैं, आप देख सकते हैं पृष्ठ नंबर 201 पर हैं हम। दो अनुच्छेद, अनुच्छेद दो में क्या लिखा है, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। अनुच्छेद तीन कहता है संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। तो ये विधि द्वारा मतलब संसद को पावर है कि वो 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। मतलब यहाँ पे सामान्य बहुमत की बात कर रहे हैं कि जहां राज्यों को बदला जा रहा है वहां पर नॉर्मल बहुमत चाहिए। तो ये इसका मतलब है जब साधारण बहुमत की बात होती है तो हमारा संविधान लचीला है, परंतु ये कठोर कब बनता है, जब वो दो अन्य प्रक्रियाओं को अपनाता है, वो दो तरीकों को अपनाता है। तो ये तरीके संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। देखिए इसकी एक अलग ही लिस्ट है कि कौन से मामले में कौन सी प्रक्रिया लगेगी, उसकी एक अलग लिस्ट होती है, हम उसमें नहीं जाएंगे, वो आप बहुत डिटेल हो जाएगा। आपको अभी सिर्फ इतना जानना है कि प्रक्रिया क्या है। तो एक तरीका क्या है, इस पहले तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात की गई है। और दूसरा तरीका और कठोर है, इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं, ये विधानसभा ही एक तरीके से, की आधी संख्या की आवश्यकता होती है। तो आप ध्यान दें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू संसद से ही होती है और संसद के विशेष बहुमत के बाद किसी बाहरी एजेंसी जैसे संविधान आयोग निकाय की संविधान संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। तो इस प्रकार संसद या कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्ट करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों तरीकों से अगर ये पास हो जाए तो अब किसी की जरूरत नहीं है, सीधे इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और उनको इस पर साइन करना होता है। ये जो संविधान संशोधन होते हैं उसमें राष्ट्रपति को साइन करना ही है, वो पुनर्विचार नहीं कर सकते। मतलब अब इतनी कठिन प्रक्रिया से जब ये गुजरा है, इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इसको पास किया है वो सब जनता के प्रतिनिधि ही तो हैं। तब ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा है, इसीलिए राष्ट्रपति से सिर्फ इस पर वो इसका एक सिग्नेचर करते हैं, कहते हैं ये पास हो गया। पर राष्ट्रपति को आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के जो मामले हैं उस पर वो पुनर्विचार की उनको छूट नहीं है। तो इस तथ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। आज ये है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधियों संसदीय संप्रभुता में निहित है। इनडायरेक्टली संविधान ने भी कह दिया कि लोकतांत्रिक लोग हैं जो इसको जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो लोकतांत्रिक ही है, हमने उन्हें चुना है। तो जब वो चेंजेस कर रहे हैं इसका मतलब है भारत की जनता ही इसमें बदलाव कर रही है। तो ये हम प्रक्रिया समझ गए, तीन प्रक्रिया होती है। अब जान लेते हैं विशेष बहुमत, मैं आपको समझा चुकी हूँ लेकिन एक बार आप इस पर फिर से ध्यान दें कि विशेष बहुमत क्या है। देखिए चुनाव कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में हमने उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं, तो हम जान चुके हैं कि विशेष बहुमत की क्या आवश्यकता होती है। तो एक बार पुनः विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है उसे समझ लेते हैं। देखिये सामान्यतः किसी भी विधायिका में कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां के सदस्यों का साधारण बहुमत चाहिए। जैसे अगर एक सदन में 247 लोग हैं तो साधारण बहुमत कितना होगा, 124 लोग मिलकर उसको पास कर दे तो विधेयक बन जाएगा। ये मैं साधारण मतदान की बात कर रही हूँ, कोई नॉर्मल कानून बनाना है। लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं अगर उसमें संशोधन करना है तो ये नॉर्मल कानून उस पर लागू नहीं होता। यहाँ पर दो प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए, और दूसरा संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए। यही बात मैंने आपको समझाई थी कि पहला तो ये कि जो भी पक्ष में मतदान कर रहे हैं वो जो सदन की कुल संख्या है, भले वो आए ना, जितनी कुल संख्या है उसके आधे होने चाहिए। और जो लोग वोट कर रहे हैं, दूसरे पक्ष ये कि जो लोग वोट कर रहे हैं पक्ष में, वो उनसे जो प्रेजेंट लोग हैं उनके वो 2/3 होने चाहिए, तभी वो पारित माना जाएगा। तो इससे ये जो प्रक्रिया है इससे हमें पता चलता है कि संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। देखिए कई मामले होते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि संयुक्त सत्र बुलाकर दोनों आपसी जो उनके विचार होते हैं दोनों सदन उससे निपटारा करते हैं, परंतु जब संशोधन की बात है संविधान में तो कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाता, उनको अलग अलग ही पास करना है। तो जब ये पास होगा तभी वो पारित माना जाएगा। तो कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता, विशेष बहुमत चाहिए ही संशोधन करने के लिए संविधान। तो पर इसका औचित्य क्या है, मतलब क्यों है विशेष बहुमत? तो देखिए लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अतः किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद हों तो विधेयक पारित करने के लिए भी 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी, है ना। कम से कम उतने लोग होने ही चाहिए जितने लिखे गए हैं। आप 300 आए, 200 आए, कितने भी आए, 273 तो पहले पास करेंगे ही, उसको तभी वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी। फिर जितने प्रेजेंट है उसमें से भी फिर वो जितने, अगर 300 प्रेजेंट है तो उनका 75% आप निकाल लीजिए, उतने भी उसको उसके पक्ष में मतदान करेंगे तभी वो पारित होगा। तो आप पृष्ठ क्रमांक 203 पर आ जाएंगे जहां पर लिखा है कि इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। ये बात हमें बार बार बताई जा रही है। इसका अर्थ यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध के बावजूद बजट या अपने पसंद का विधेयक पारित करा सकता है। देखिए अगर लोकसभा में आपको बहुमत है तो और नहीं भी है तो कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए होता, 50% लोग हैं बस वो मिलकर पास कर देते हैं। पर अगर संशोधन संविधान में करना है, आपको ध्यान रखना है हम सामान्य कानून बनाने की बात नहीं कर रहे, अगर संविधान में कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर आपको लोकतांत्रिक शब्द हटाना है तो मतलब आप संविधान में लिखी बात को बदल रहे हैं, है ना। तो उसके लिए विपक्षी दलों को भी सहयोग में और विश्वास में लेना पड़ता है। तो इस तरह संशोधन प्रक्रिया के पीछे बुनियादी भावना यही है कि उसमें राजनीतिक दलों और सांसदों की व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। मतलब ये जो भी निर्णय लें जब हम संविधान को बदलने का, तो ये कोई एक पार्टी का इस पर हक नहीं है, क्योंकि जब संसद में तो विभिन्न विभिन्न दल हैं, विभिन्न विभिन्न सोचों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सब मिलकर किसी बात पर एक राय बनाते हैं, एक मत होते हैं, तभी तो माना जाएगा ना कि ये सही ढंग से काम कर रहा है। अगर कोई सारी पार्टीज के अपने देखे उद्देश्य होते हैं, अपने लक्ष्य होते हैं, और वो एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं, अगर विरोधी मिलकर, सब पार्टियां मिलकर अगर कोई संविधान में संशोधन कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये जरूरत था, इस संशोधन की जरूरत थी, ये देश की परिस्थितियों के लिए जरूरी है। तो इसीलिए इसको इतना जटिल बनाया गया है कि कोई भी पार्टी के पास अकेले इतनी सीट नहीं हो सकती है, जिसके पास लोकसभा में भी अपना बहुमत हो, राज्यसभा में भी हो, इम्पॉसिबल। अभी आपने देखा होगा कि जब धारा 370 हटाई गई कश्मीर से, तो जो अभी सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, लोकसभा में तो उनके पास बहुमत था पर राज्यसभा में उनके पास नहीं था बहुमत। पर उन्होंने जब संसद को बताया कि हमें क्यों जरूरत है, तो विपक्षी दलों ने भी उनके संग वोट किया, तो आप कभी, आपको मौका मिले तो आप कभी देखिए ये जो लाइव आता है, या आप कभी यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये संशोधन हुआ था। 370 तो अब हमारे आर्टिकल लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है, हमने पढ़ा था ना स्पेशल पावर्स हैं राज्यों को, तो इसको बदलने के लिए कैसे राज्यसभा की भी अनुमति चाहिए थी और राज्यसभा में बहुमत नहीं था, तो विपक्षी दलों ने भी वहां पर सरकार का साथ दिया। तो चलिए आज यही हम विराम देते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने जान लिया, एक थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या समझा कि संविधान हमारा, उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान थोड़ा सा लचीला भी है, थोड़ा कठोर भी है। संविधान में संशोधन के लिए संसद को पावर मिला है, वो है आर्टिकल 368 के तहत। आर्टिकल 368 कहता है कि संसद संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, एक तो कहते हैं कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर होता है, इसके लिए इससे ज्यादा संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जाता, ये सामान्य कानून बनाने में जनरली यूज होता है। लेकिन जब संविधान में संशोधन करना है, उसके दो मुख्य तरीके क्या है? पहला है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, और दूसरा विशेष बहुमत संसद का प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिका। तो ये जो संसद में को जो पावर दिया है संशोधन का, वो है आर्टिकल 368, आपको ये ध्यान रखना है। और ये दोनों ही तरीकों से संसद मिलकर संशोधन कर सकती है संविधान में। सामान्य कानून में संसद अपने आप ही अपने बहुमत से कर सकती है, लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है, आर्टिकल 368 के द्वारा ही किया जाता। तो आज हम यही रुकते हैं और कल मैं आपसे फिर मिलूंगी, इसी चैप्टर पर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।